राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 28 मई 1993 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम। तो वो जो तत्व ज्ञान है वो आत्मज्ञान है, तो आत्मज्ञान में भी प्रतंत्रता होती है क्या? खास अपना ज्ञान इसमें पराधीनता कैसी? पराधीन तो तब दूसरे में, दूसरे का ज्ञान करना हो, दूसरे का विचार करना हो, तो उसमें तो व्यवधान होता है, समय लगता है, पर स्वयं अपना आपका ज्ञान है उसमें पराधीनता कैसी? जहां जीवन मुक्ति के लक्षण है, गुणातीत के लक्षण है, वहां समदुख सुख स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ पुरुष प्रकृतिस्थ ही भुंगते प्रकृति जान गुणान, प्रकृति जन्य गुणों को प्रकृतिस्थ पुरुष भोगता है। प्रकृतिस्थ पुरुष होता है प्रकृति जन्य गुणों को भोगता है। जो प्रकृतिस्थ नहीं होता वो गुणों का भोगता नहीं होता। तो गुण भोगता है वो सुख दुख नाम पुरुष सुख दुख नाम भोगते हेतु उठते। पुरुष सुख दुखों के भोगतापन में पुरुष हेतु है, कार्य कर्ण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रचते। कार्य और कर्ण के कर्तापन में तो प्रकृति हेतु है और पुरुष है सुख दुख के भोगने में हेतु है। तो कहा पुरुष सुख दुख का भोगता नहीं है, ये तो अभोगता है, अकर्ता है। तो गीता कहती है पुरुष सुख दुख का नाम भोगते हेतु, सुख दुख भोगने में पुरुष हेतु है। तो पुरुष कौन सा हेतु है? तो कहते हैं पुरुष प्रकृति स्थो ही, प्रकृति में स्थित होता है पुरुष, वो सुख दुख का भोगता होता है। तो सुख दुख का भोगता कौन नहीं होता? कि सम दुख का सुख स्वस्थ जो स्वयं स्थित हो जाएगा वो पुरुष भोगता नहीं होगा। तो प्रकृति और पुरुष दो है, पुरुष जो चेतन स्वरूप का नाम है और प्रकृति जो प्रकार परमात्मा की एक विलक्षण शक्ति उसका नाम प्रकृति है। तो प्रकृति में स्थित होने से पुरुष सुख दुख का भोगता बनता है और स्वयं में स्थित हो जाए अपने आप में तो सुख दुख में सम हो जाएगा। सुख और दुख में सम हो जाएगी क्योंकि वो प्रकृति में स्थित नहीं है। जैसे कोई मकान में बैठा है आदमी और मकान में आग लगा ले तो वो जलता है उसे दुख होगा, पर जो मकान में नहीं है वो मकान में आग लगा गए तो उसके क्या बाधा होगी? जो को मकान में है ही नहीं वो अलग बैठा है तो मकान जल जाओ जल जाओ, बढ़िया हो जाओ घटिया हो जाओ ठीक हो जाओ बेठूक हो जाओ। तो प्रकृति में स्थित नहीं होता है तब सुख दुख में सम हो जाता है। और गीता का सिद्धांत है समत्वम योग उच्चते, गीता का योग है समता। ये जो योग है ना, योग के अर्थ अलग अलग होते हैं। योग शब्द योग, योग का अर्थ गीता में तीन तरह से बताया मैंने। गीता दर्पण में योग के अर्थ ये तीन, क्योंकि व्याकरण में योग शब्द बनता है व्याकरण से, तो उसमें तीन धातु है, एक युजिर योग धातु है, एक युज समाधौ है, एक युज संयम ने है। तीनों साधनों से घाय प्रत्यय करने पर योग तदों को घिरने तो विद्या का ग्रह हो जाता है, योग शब्द बन जाता है व्याकरण की विधि से। व्याकरण जानने वाले शब्द तीन तरह से, तो योग शब्द अर्थ होता है समाधि, योग का अर्थ होता है सामर्थ्य, सबको वश में कर रहे, ऐसा योग का अर्थ होता है। और एक योग का अर्थ होता है युद्ध योगे, ऐसे दो का संबंध हो जाए उसका नाम योग। तो योग नाम समाधि का है, योग नाम संयोग का है, और योग नाम सामर्थ्य का है। तो गीता ने किसको योग माना है? गीता ने योग दूसरों को भी माना है। गीता का साक्षात योग अर्थ है समतम योग उच्चते, समता हो जाए, ये समता योग अर्थ है। समाधि गीता मानती है, समाधि को भी मानती है योग, परंतु तो गीता का मुख्य योग नहीं है, मुख्य योग है समता। तो समता कैसे? के सुख आवे दुख आवे, अनुकूलता आवे प्रतिकूलता आवे, उसमें अपने में एक समान स्थिति है, सुख दुख से अभिभूत न हो, वो योगी है। तो योग न हुआ समता का, समत्तम योग उच्चते साप का, हमारे जहाँ योग नाम है समता का। योग दर्शन में योग स्थित व्यक्ति निरोधा, योग दर्शन में योग का अर्थ किया है स्थित वृत्तियों का निरोध, उसको योग कहते हैं। ये योग दर्शन की योग परिभाषा है, गीता की परिभाषा है समत्व योग। तो समता क्या, आप ध्यान देकर सुने, सब भाई बहन ख्याल करके सुने, हमारे अनुकूलता आवे प्रतिकूलता आवे, शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता, मन की अनुकूलता प्रतिकूलता, बुद्धि की अनुकूलता प्रतिकूलता, सिद्धांत की अनुकूलता प्रतिकूलता, इन अनुकूलता प्रतिकूलता आने पर अपने में कोई विकार न हो, उसका नाम है योग। गीता के अनुसार समता का नाम योग। अब ये समता आप जिस किसी तरह से प्राप्त कर सको, चाहे समाधि लगाकर कर लो, चाहे विचार कर लो, चाहे भगवान के शरण होकर कर लो, इसके सिवाय और किसी उपाय से ही कर लो, आपके मन में अनुकूलता प्रतिकूलता निरागर तो बुरा लगता है, कोई प्रशंसा करे तो अच्छा लगता है, कोई निंदा करे तो बुरा लगता है। ये जो अच्छा और बुरा लगता है जिसमें वृत्तियों में फर्क पड़ता है, वो योग नहीं है। योग नाम उसका है आदर करे निरादर करे, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई प्रशंसा करे कोई निंदा करे कोई फर्क नहीं पड़ता। अनुकूल परिस्थिति बने प्रतिकूल परिस्थिति बने, परंतु अपने पर असर न हो, तो उसको गीता ने योग कहा है। गीता में इसका वर्णन आया है, सर्वो ये साम्य भरा तैर्जित सर्वो, इस जीवित अवस्था में ही वे संसार को जीत गए, संसार पर उनकी विजय हो गई। क्योंकि ये शाम मन साम्य स्थितम, जिनका मन साम्यावस्था में स्थित है जो का जो मन स्थित है, अनुकूलता प्रतिकूलता किसी तरह की आवे, शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता, इंद्रियों की अनुकूलता प्रतिकूलता, मन की अनुकूलता प्रतिकूलता, बुद्धि की अनुकूलता प्रतिकूलता, और अपने सिद्धांत जैसे हम अद्वैत मानते हैं, तो अद्वैत का वर्णन होता है द्वैत का। इनके आते हुए भी हमारे सिद्धांत की क्षमता क्या कि हमारे मन विचलित न हो, बुद्धि में पक्षपात न हो, एक तरफ खिंचाव न हो। आकर्षण और विकर्षण, जिस तरफ हमारा आकर्षण हो जाए उससे विकर्षण हो जाए, ये ठीक है, ये बेठीक है, ये अनुकूल प्रतिकूल है। इन दोनों में अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान होना दोषी नहीं है। ये हमारे अनुकूल बोलता है, ये हमारे प्रतिकूल बोलता है, ये हमारे आदर करता है, ये हमारा निरादर करता है, ऐसा जो ज्ञान होता है वो ज्ञान दोषी नहीं होता। ज्ञान कोई सही दोषी होगा ही नहीं। ज्ञान है जानना यथा से, दोष क्या है, काट को काट जाने, मनुष्य को मनुष्य जानने लगे, ये मनुष्य है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ऐसा जो ज्ञान है वो ज्ञान दोषी नहीं होता। उस ज्ञान से जो विकार पैदा होता है, हर्ष और शोक होता है, राग और द्वेष होता है, प्रसन्नता और अप्रसन्नता होती है, ये है विकार। ये विकार जब तक होते तब योग नहीं हुआ गीता का। तो विकार पैदा ना हो, संसार की अनुकूलता प्रतिकूलता तो आवेगी। कोई ऐसा इतिहास में आदमी को नहीं मिलेगा कि जिसके सामने अपने जीवन में अनुकूलता प्रतिकूलता ना आई हो। जैसे भगवान राम है, उनको राज्याभिषेक की बात आई और फिर वनवास की बात आई, तो अनुकूलता आई, राज्याभिषेक हो जाएगा, अनुकूलता आई, और फिर का 14 वर्ष राम वनवासी, तापस वेश उदय वर्षेश उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, वनवास आया। तो दोनों आने पर उनमें विकार नहीं आया। लिखा है प्रसन्नता ज्ञान गताभिषेक तथा न मंगले वनवास दुख मुखाम्बुज श्री रघुनंदन से। तो भगवान जो मुखाम्बुज श्री है, भगवान के मुख की जो प्रसन्नता है वो राज्याभिषेक होगा, इसको लेकर वो राजी ज्यादा नहीं हुए। और वनवास के दुख लेकर के तथा न मंगले वनवास दुख था, वनवास हो जाए इसमें मुख में मलिनता नहीं आई। मुखाम्बुज श्री, मुखाम्बुज जो श्री शोभा है वो समान रही, और समान रहने से भी एक विलक्षण बात बताई कि जब केकई ने राजा को वचनबद्ध करके और रघुनाथ जी की सौगंध काटने पर वरदान वरदान मांग लिए, मेरे जो पुराने वरदान दो बाकी है वो लेना चाहती हूँ, राजा ने कहा दो के चार ले लो, चार से कि नहीं, दो लेने में ही संदेह है, चार कहाँ दोगे आप। अच्छा मांगो तुम वरदान, तो एक वरदान में तो राम जी का वनवास और दूसरे वन में भरत का राज्य, ये मांगा। तो दशरथ जी व्याकुल हो गए और कह दिया कि भरत को तुम राज्य दे दो, इसमें कोई बाधा नहीं, इसमें राम भी नाराज नहीं होंगे, हम भी राजी हैं, परंतु राम जी को वनवास क्यों भेजती हो, ये बात हुई। अगर उस समय एक बात और हो जाती कि तुमने वरदान मांगा है, वो दो वरदान मांगा, दो में पहला वरदान क्या है कि तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, तो ये पहला वरदान है, ये पहले ले लो और ये राज्य देना ये पीछे ले लो, पहले वरदान ले लो। ऐसा कर लेते ना तो ठीक बात रह जाए, ठीक ठहर जाए, कुछ नहीं बिगड़ता, ठीक बात हो जाती। दशरथ जी ने कहा तुम राम को वनवास में क्यों भेजती हो, कहते नहीं बनवाए तो अगर कल भी नहीं जाएंगे तो बस मैं मर जाऊंगा तुम्हारा पेश होगा। ऐसे तुम एक मनुष्य मुख्य हो और प्राण जाए पर बटन जाए इस बार गई तब ये कुछ तो हो गया सफा। पहले कदम अच्छी बात है तेरा पहला वरदान पहले दे देंगे जो वरदान फिर दे देंगे और वो बुला लो तो कुछ नहीं होता कल तो सब ठीक बैठ जाता। पर वो और इस वनवास में भेज दो कल ही जाएंगे सुबह इस वनवास निकाल चाहिए हट कर दिया पहले वरदान का पहले दूसरे वरदान का वरदान तो दूसरा खाइए। तब ये बात हुई तो राम जी को पहले राज्य सुनाया कि भाई कल आपको राज्याभिषेक होगा तो बड़ा आनंद हुआ सब में अयोध्या मातृ में बड़ा आनंद हुआ कि राम जी राजा बनेंगे। तो लक्ष्मण जी आए बड़े खुशी हुए राम जी को कहा तो राम जी ने कहा देखो लक्ष्मण निमित्त मात्र तो मैं बन जाऊंगा राजा पर राज्य तुम्हारा ही है भाइयों का ही है तुम बोस रहना तुम ऐसे मत समझना राज्य हुआ भगवान को सामने कही। और उस समय राम जी का विचार आया कि जन्मे एक संग सब भाई हम एक साथ जन्मे थोड़ा पहला राम जी जन्मे पीछे वरुण जी जन्मे फिर लक्ष्मण जी जन्मे फिर शत्रुघ्न जी जन्मे ये उनके जन्म का क्रम है। परंतु समझे थे एक रात में साक्षी जन्मे तो जन्मे एक संग सब भाई और भोजन शयन केली लड़काई साथ में भोजन करते साथ में सोते साथ में खेलते साथ में लड़कन भी था लड़कपन भी था बचपन साथ में ही रहा और कर्ण भी कान भी दे गए तो साथ में उपमी दिले हुई तो साथ में पढ़ाई में गई तो साथ में अरे और तो क्या करे ब्याह भी साथ में ये भी साथ में भोजन शहर के घर का ही कर्ण वेद उपवीत विवाह संग संग सब भय उचाओ सब उत्सव संग संग हुआ प्रणम। इस सूर्य वंश की रघुवंश की एक रीत है वह रीत खराब है क्या था अंत को विमल वंश अगर अंत थे वो विमल वंश तो बड़ा विमल है मगर शुद्ध वंश है शुद्ध वंश में अनुचित एक बात अनुचित है इसमें वंश हमारा बड़ा शुद्ध रघुवंश है मेरा बहुत प्रसाद रघुवंश की विमल वंश कर अनुचित एक बात अनुचित है कि बंधु ब्याह बड़े अभिषेक छोटो छोड़ देना बड़े को राज देना तुम साथ में या सभी राज भी साथ में ही वहां से चारूंगा तुमने एक को देना चाहिए ये रस्म पूरी करनी है परंपरा से रीति चली आई है तो अनुचित है ये उचित नहीं है ये रघुनाथ जी महाराज कहते हैं ये रीत अनुचित है परंतु वो रस्म पूरी करनी है रीत है ऐसी पूरी करनी है इस वजह से निमित्त मात्र में बनता हूं। तो गोस्वामी जी वहां देखते हैं कि प्रभु पश्चतान विशेष सुहाई क्या काम है भगवान की जो पश्चाताप है हरे भगत बन की कुटलाई क्या समय है उसपे हाँ प्रभु सप्रेम पश्चान सुहाई प्रेम सही जो पश्चान है पश्चाताप है कि ये ठीक नहीं है ये बड़ी सुहावनी चीज है पश्चाताप होना बड़ी बढ़िया चीज है क्यों कि हरे भगत मन की कुटलाई जो राम जी का भगत होगा उनकी कुटलाई दूर कर देंगे मन उनका भी स्वार्थ भाव दूर होगा हमारे रघुनाथ जी महाराज मालिक है उनके मन में कपट नहीं है, अपना स्वार्थ नहीं है, तो अपने भी स्वार्थ न रखे, तो हरे भगत मन की कुठिलाई, ऐसी उनकी बात हुई। तो राम जी के राज की बात सुनकर भगवान में कोई प्रसन्नता नहीं आई, उनको तो अनुचित मालूम दिया। अनुचित से कोई राजी होता है? हमारे मन के विरुद्ध अनुचित बात हो जाए तो उसमें हम राजी होंगे क्या? तो ये अनुचित हुआ था। इस बात से भगवान ने देखा ठीक है भाई, विमल वंश की जीत है तो अपन ठीक है, स्वीकार कर ली। अब ये बात हुई, वो राम जी को बुलाने के लिए गए सुमंत, तो वहां सुमंत गए बुलाने को, पधारो क्या बात है, हमारा बात का तो पता नहीं है, महाराज मूर्छित हो रहे हैं। और केकई ने कहा है कि महाराज राम जी को दिखाओ, बुलाओ, राम जी को देखना चाहते हैं। तो वहां लोगों ने दीप ही ले गए चलाई, लेने गए रघुवंश, दीप हुआ दीपक, और दीपक हुए। अब गए पास वहां जाकर, तो जायदीश रघुवंश मणि, जब केकई की बात देखी, दशरथ जी को मूर्छित देखा, तो वहां मणि हो गए, तो रघुवंश मणि, चाहे दी करू वंश मैंने, उस मणि हो गए। उस बाद में वो सुपाही ने भाई सूर्य की, हाँ, जो वह बात सुनी और केकई ने सुनाया कि क्या बात है माँ, कि बेटा बात क्या है, तुम तो सदा ही अपने पिता की, बड़े भाई भाइयों की सब आदर करते हो, ऐसी बात बढ़िया है, तो मैंने वरदान मांग लिया, तुम्हारा वनवास और व्रत का राज्यवास, राज्यवास राजा को दुख हो गया। तो ये बात सुने तो मन मुस्काए, भानु को जो भानु भगवान हंसे, तो उसमें सूर्य हो गए, पहले से दीपक देखा जब हुए मणि, और बात सुने जन हो गया सूर्य, तो तेज बढ़ा है रघुनाथ जी का, घटा नहीं। वनवास की बात सुनकर गए तो प्रसन्न हुए, और रघुवीर चौगुना चाहू, राम जी ने चौगुना चाह हुआ, चार गुना चाह अधिक हुआ, राज्य सुनने से जो प्रसन्नता हुई उससे चार गुना उसका अधिक है राम जी वनवास में। चार गुना क्या हुआ? कहा कि मुनिजन मिलन विशेष बन, सब ही भांति हित मोर, जंगल में जा ऋषि मुनि मिलेंगे, अरे राज में ऋषि मुनि थोड़ी मिलेंगे। ये बात बढ़िया थी, एक बात तो ये हुई, मुनिजन मिलन विशेष बन, अरे सब ही भांति हित मोर, अरे तिन में पितु आयुष बोर, दूसरी बात पिताजी का गया, और सम्मत धरनी तो के कई माँ को कहते माँ तेरी सम्मति हो गई, तो दूसरा राजा की आज्ञा, तीसरा तुम्हारी प्रसन्नता, और भरत प्राण पे पावे राजू, हमारे प्राण पे भरत को राज्य मिल जाएगा, विधि सद विधि मुख सन्मुख आज, आज तो विधाता सब तरह से मेरे सन्मुख हो गए। ये चार चाहो मुनि विशेष में एक, और एक पितु आज्ञा, और एक माँ की प्रसन्नता, भरत को राज, तो चौगुना उत्साह हुआ उनके ज्यादा बड़ा। तो भगवान के राज से कोई प्रसन्नता हुई हो और वनवास से न्यूनता नहीं हुई किंतु और बढ़ा, इस तरह से मनुष्य के लिए चाहिए कि अपने स्वार्थ की बात सुन करके तो मलिनता होनी चाहिए, और विपत्ति बात बन करके राजी होना चाहिए, उनमें चौगुना चाहो उतना चाहिए। तो गीता ने तो कहा समता, समता रहनी चाहिए दोनों में, राज सुनाओ चाहे वनवास सुनाओ, बरोबर रहना चाहिए। रघुनाथ जी के वनवास सुनने से चौगुना चाहो हुआ, तो भक्तों के मन में ऐसी बात आनी चाहिए कि आपके मन के विरुद्ध बात होने पर खुशी आनी चाहिए, ज्यादा राजी होना चाहिए, जो जो बिलिस्ना आवती उधर राजी होना चाहिए। तो ये है गीता की समता, समता से ऊंचाइए क्या विपृति में राजी, तो इस क्या होगा समता आ जाएगी। जैसे गंगा जी का कोई पार जाना था उस पार, तो गंगा जी ऐसे चलेगा तो पार जाएगा बहुत दूर, गंगा ले जाएगी, तो गंगा जी के सामने चले, सामने चलते चले तो भी गंगा ले ही जाएगी उधर। तो समता कब आएगी, जब कि गंगा जी के प्रवाह को ले सामने बरोबर सामने चला जाए। तो ये विपत्ति के सामने आनंद आना चाहिए जब समता रहेगी और अनुकूलता में राजी होगो क्षमता नहीं होगी, इसका नाम योग है। गीता में समत्व योग उचित समान स्थिति रहनी चाहिए, अनुकूलता बुद्धि वाले बनो, ये योग है। तो योग शास्त्र शिक्षा सम्मति योग शास्त्र है ये। तो योग होने से कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, लय योग, हठ योग, राज योग, मंत्र योग, अनाचलते योग, अष्टांग योग, ये योग है सब। तो योग नाम गीता का है समता का, समता रहनी चाहिए और ऐश्वर्य रहना चाहिए और समाधि भी होनी चाहिए, सब तरह का मिलावा योग गीता का है। मुख्य गीता की है समता, ये योग है। आप पढ़े लिखे हो, अपढ़ हो, जानते हो नहीं जानते हो परवाह नहीं, आपके अनुकूलता प्रतिकूलता में समता रहनी चाहिए। ये आप किसी उपाय से कर लो, बस योग हो गया। तो इस योग की प्राप्ति अपने को करनी है। सब भाई बहन ज्ञान ध्यान देकर सुनो कि सिद्धियों सिद्धियों समो भूतवा समा सिद्धौ असिद्धौ च सिद्धि सिद्धियों निर्विकार करता साधु उचते। सिद्धि असिद्धि में निर्विकार रहे, सम रहे, उसका नाम है योग। ये गीता का योग अपने जीवन में लाना है, ये सिद्धांत है। आप कुछ भी पढ़ो, कुछ भी अभ्यास करो, आपको सर्वथा छुट्टी है। टोटल ये आना चाहिए अंत में हमारे मन में, ये बात है, मन में फर्क ना पड़े। यही तेरे स्तर को ये सांग साम्य स्थित मना, ये नहीं आत्मा सम है, आत्मा सम नहीं, योग सिद्ध होगा तो यही तीर्थ स्तर को ये सांग साम्य स्थित मना निर्दोष अंग सम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष सम है। जिसका मन निर्दोष सम हो गया तो गीता सिद्धि दे देगी, सिद्ध हो गए। तुम कुछ पढ़े लिखो हो न पढ़े लिखो, कोई पूछते ही नहीं तुमने योग अभ्यास किया कि नहीं किया, और कुछ किया कि नहीं किया, पढ़ाई की कि नहीं की, कोई हद नहीं। ये समझना चाहिए। तो ये आप लोगों से कहना है अपने जीवन में समता को लाओ, अनुकूलता प्रतिकूल दोनों आने पर भीतर में रंग न बदले। रंग बदला नहीं उसको ये रंग है, इसका नाम समता है, ये योग है। कहा
मन को सम करने के लिए कहा, मन को सम करने का प्रयत्न क्या है, मन को कहा मन सम नियम में,
हाँ
मन जो सम हो इसके लिए प्रयत्न नहीं है, मन सम के लिए।
मन सम होगा ज्ञान योग से, कर्म योग से, भक्ति योग से, तीनों से होगा। ज्ञान योग से भी सम हो जाएगा, भक्ति योग से सम हो जाएगा, कर्म योग से सम हो जाएगा, ऐसा गीता में आएगा। कोई से करो नहीं, और उस बात हम तो इतना कहते हैं कि आपकी मर्जी आओ, जिस योग को करो, मन में समता आनी चाहिए, आप खुशी आओ जो करो, मर्जी आओ जो करो।
सहज कौन सा है, तीनों में सहज कौन सा है?
वो अधिकारी का अनुसार, अधिकारी में छोटा बड़ा नहीं है, यहाँ अधिकारी में छोटा बड़ा नहीं है। अधिकारी क्या है कि जिसको ज्ञान योग सुगम मालूम देता हो तो वो श्रद्धा विश्वास और योग्यता, किस पर श्रद्धा है, किस पर विश्वास है और किस साधन की आप में योग्यता है, ये देख करके पात्रता देखनी होगी। पात्र ऊंचा नीचा छोटा बड़ा की तक श्रद्धा नहीं है, बिल्कुल नहीं। श्रद्धा आपके ज्ञान योग पर तो ज्ञान योग आपके लिए ठीक है, श्रद्धा आपकी भक्ति योग है तो भक्ति योग ठीक है, श्रद्धा आपकी कर्मयोग पर तो कर्मयोग ठीक है, आपका विश्वास श्रद्धा और भीतर में योग्यता जिसमें वो उसके पात्र हो और उसके बारे वो योग, ये बात इसमें छोटा बड़ा नहीं है, सब समान। नारायण 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 सब से होगी, ज्ञान योग से कर्म योग से योगास्त्रो में आप लोग था भागवत में तीन योग होता है, कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग, तीनों योग तीनों समता आ जाएगी। समता नहीं आई तो ज्ञान योग नहीं, भक्ति योग किया समता नहीं तो भक्ति योग नहीं, कर्मयोग किया क्षमता नहीं है तो कर्मयोग नहीं, कर्म है कर्म है, भक्ति है ज्ञान है कर्म है योग नहीं, एक कर्म है कर्म योग है, एक भक्ति है एक भक्ति योग है, एक ज्ञान है एक ज्ञान योग है। गीता योग की